verse 34, without any attributes, without any actions, without any desires, without any impurities, without any change, without any form, eternal, ever liberated and pure am I. ये निर्वाण षटकम जैसा ही है ना कुछ कुछ, बिल्कुल, कि जो आत्मन है उसके ना तो कोई एट्रीब्यूट्स हैं ना कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कोई क्वालिटीज नहीं है उसकी, कुछ भी नहीं है उसके अंदर. जब हम गुण और क्वालिटीज़ की बात करते हैं वो किस में आते हैं, वो है सत्व, रजस और तमस, जो प्रकृति के गुण हैं, प्रकृति. तो हमें ये समझना है कि एक प्रकृति है और ये आत्मन है. अगर हम सांख्य योग की दृष्टि से देखें, आप लोगों को याद हो जब हमने भगवद गीता किया था उसमें हमने बात की थी प्रकृति और पुरुष, दो पार्ट्स किए थे. तो प्रकृति में सारे गुण हैं और पुरुष जो है वो निर्गुण है, कोई गुण नहीं है उसमें, है ना, निर्गुण. तो जितने भी हमारे कर्म हैं वो सब कहाँ होते हैं, प्रकृति में होते हैं, शरीर में होते हैं, मन में होते हैं. आत्मन में कोई भी कर्म नहीं होता है. और इच्छाएं, इच्छाएं कहाँ पे आती हैं, इच्छाएं मन में आती हैं, लेकिन आत्मन में कोई इच्छा नहीं आती. देखो ये भी हमारा हो गया ना, मैं कौन हूँ, मैं आत्मन हूँ, मैं मन नहीं हूँ. तो अगर इच्छा है ही नहीं वहां पर, इच्छा कहाँ है, मन में है. इम्प्यूरिटीज, जितनी भी अशुद्धियां हैं वो कहाँ है, मन और बुद्धि में है, आत्मन में कोई भी अशुद्धि नहीं है. और फिर से बार बार हमें क्या याद रखना है, वो आत्मन कौन है, वो आत्मन मैं ही हूँ. फिर वो यहाँ पे कह रही हैं कि जब भी वो आत्मन शब्द का इस्तेमाल करती हैं, ये याद रखना है कि वो कोई ऐसी किसी स्थिति की बात नहीं कर रही, किसी एंटिटी, किसी इंसान या देव की बात नहीं कर रही हैं जो कहीं और पता नहीं कहाँ रहता है. वो हमारी ही बात कर रही हैं, वो मेरी ही बात कर रही हैं, वो तुम्हारी ही बात कर रही हैं, है ना. शी सेइंग आई एम टॉकिंग अबाउट यू एंड आई एम टॉकिंग अबाउट योर रियल आई. ये आत्मन कहीं बाहर नहीं है, ये तुम ही हो, द रियल आई. तो हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हम शुरू से करते आ रहे हैं रियल आई और फॉल्स आई में. और रियल आई क्या है, वो इतना शुद्ध है कि उससे शुद्ध कुछ हो ही नहीं सकता, और वो ही शुद्ध है असल में, जो रियल आई है. तो हम जब रोज, एक होता है जैसे व्यवहार हम बोलते हैं ना, रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम बात करते हैं बोलते हो, जैसे मैंने ही बोला मैं दिल्ली आई हूँ, तो ये किस आय की बात हो रही है, जो व्यवहारिक आय है, जो फॉल्स आय है, है ना. वही तो दिल्ली आया है, वही तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ भी कार्य कर रहा है. लेकिन जब वो यहाँ पे आय की बात करती हैं तो वो फॉल्स आय की बात नहीं कर रही, वो रियल आय की बात कर रही है. रियल आय मतलब आत्मन की बात कर रही है, ठीक है. ज़्यादातर लोग जब आय की बात करते हैं, मतलब ऑब्वियसली संसार के संबंध में, तो किसकी बात होती है, द फॉल्स आय की. Verse 35, अब यहाँ पे इन्होंने आत्मन को समझाने के लिए स्पेस का एग्जाम्पल लिया है, आकाश का एग्जाम्पल लिया है. हम लोग शायद पहले भी ये ले चुके हैं कि जैसे पूरा हमें सब कुछ नज़र आ रहा है, ये जो संसार इन आँखों से, अगर हम इसमें देखें, एक स्पेस एक ऐसा एलिमेंट है जो हर जगह मौजूद है ना, हर जगह है, हर चीज़ उस स्पेस में ही है, उस आकाश के तत्व में ही है. और ये जो आकाश है, एक तो हर जगह है, अंदर भी है बाहर भी है. जैसे हम आकाश के अंदर हैं इस समय, हमारा ये जो शरीर है, और हमारे शरीर के अंदर भी आकाश है ना, हमारे अंदर भी स्पेस है. दूसरी चीज़, आप कुछ भी करिए ये आकाश कभी गंदा नहीं होता, ये स्पेस गंदी नहीं होती. आप सोचो, सपोज़ एक गंदगी रखी हुई हो आपके, सपोज़ आपके फर्श पर गंदगी फैल गई, फर्श गंदा होगा, क्या वहाँ की जो स्पेस है हम बोल सकते हैं कि वो इम्प्योर हो गई, क्या वो गंदी हो गई, नहीं होती ना. हाँ, वो हवा भी गंदी हो सकती है, हवा दूषित हो सकती है, हवा में अगर कुछ स्मेल आ सकती है, लेकिन स्पेस कभी गंदी नहीं होती. लेकिन हमें एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब हम स्पेस की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ मेटाफॉर में है, अदरवाइज स्पेस में फिर भी, मतलब स्पेस जो है उतनी सूक्ष्म नहीं है जितना आत्मन सूक्ष्म है. अगर स्पेस जो एक एक एलिमेंट है वो इतना शुद्ध हम समझ सकते हैं उसको, तो सोचिए जो आत्मन जो एक्चुअल है वो कितना शुद्ध होगा। तो उसको कुछ भी हो जाए वो कभी खराब होता ही नहीं है। इसीलिए बार बार कृष्ण भी बोलते हैं ना गीता में कि तुम मेरे उसमें आ जाओ, या जब तुम आ जाओ तो कोई तुम्हारे अंदर ना कोई सिन है, तुम्हारे सारे पाप सब कुछ छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे आकाश में कोई भी कितनी भी गंदगी हो, आकाश गंदा नहीं हो सकता, ऐसे ही आत्मन कोई कितनी भी गलतियाँ कर ले, कोई कितने भी पाप कर ले, कुछ भी कर ले, वो कभी गंदा नहीं होता। वो कहाँ होते हैं? वो सब प्रकृति में होते हैं, है ना, आत्मन में कुछ नहीं होता। फिर वो कहती हैं कि यहाँ पर जैसे अभी हम लोग हैं, यहाँ पे 10 लोग हैं, तो 10 लोग हैं, 10 झूठे आए हैं, है ना, लेकिन रियल आए इन 10ों में भी एक ही है ना। देर इज ओनली 1 रियल आए बिटवीन ऑल ऑफ अस। जैसे कि अगर हम सब चुप हो जाएं तो हम लोगों का साइलेंस एक ही होगा। बोल रहे हैं तो हर एक की आवाज़ अलग अलग आ रही है, लेकिन अगर हम लोग चुप हो जाएं तो मौन तो एक ही है। हम ये नहीं बोल सकते ये मेरा मौन है, ये आपका मौन है, ये इसका मौन है ना, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही फॉल्स आए बहुत सारे हैं, लेकिन रियल आए एक ही है। तो क्या करना है हमें? हमें उस फॉल्स आए से मुंह मोड़ लेना है और रियल आए की तरफ मुंह को मोड़ देना है, है ना। कबीर क्या बोलते हैं, यहाँ पे इन्होंने कबीर का एग्जांपल दिया है, रिट्रेस योर स्टेप्स, वापस चलिए, उल्टा घूम जाइए, है ना। रिट्रेस का मतलब है उल्टे हो जाइए जहाँ पे हो। रिट्रीट फ्रॉम द बॉडी, शरीर से भी उल्टे हो जाइए, प्राण से भी उल्टे हो जाइए, मन से भी उल्टे हो जाइए, बुद्धि से भी उल्टे हो जाइए। बाहर की बजाय अंदर चलना शुरू कर दीजिए। तो वो कहते हैं कि जो नॉर्मल इंसान है, जिनको नहीं मालूम, अज्ञानी है, वो क्या करते हैं, वो भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में जा जाके, कि हमें शायद वहाँ पे भगवान मिलेंगे। तो कह रहे हैं वहाँ थोड़ी भगवान है। अगर भगवान है तो सोचो वो ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में होंगे, है ना, वो तो यहाँ पे भी हैं, अभी हैं, तुम्हारे अंदर भी हैं, उनको कहीं बाहर जाके ढूंढने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो वो कहती हैं कि लोग जाके ईंट और पत्थर की बिल्डिंग में नमस्कार करके बहुत खुश हो जाते हैं, है ना, और वो सोचते हैं कि हम भगवान के घर हो आए। तो वो कहती हैं कि अगर जिन मंदिर मस्जिदों में तुमने जाके अपने हाथ जोड़े, अगर तुम उन्हीं को ध्यान से देख लेते, अपने ही चेहरे को देख लेते, आंखें देख लेते, तो तुम्हें समझ में आता कि जो भगवान है वो तो तुम्हारे टेंपल, जो तुम्हारी बॉडी है वो एक टेंपल है और वो उसी में विराजमान है, है ना, यहीं पे है, उसको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो सर्वव्यापी है, द वन हु इज ओमनी प्रेजेंट, वो तुम्हारे अपने शरीर में भी तो रहता है, वो कहीं ऐसा तो नहीं है वहाँ नहीं होगा। जो एटर्नल है, जो सर्वदा है, शाश्वत है, वो तो इस समय भी मौजूद है, राइट एट दिस मोमेंट, है ना। कभी कभी जैसे हमें होता है, आज जन्माष्टमी है, आज भगवान के दर्शन कर रहा है, या आज रामनवमी है, या वो है, तो ऐसा तो नहीं है कि भगवान किसी पर्टिकुलर डे पर ही आते हैं, है ना, वो तो हर समय है, हर समय। ये सब चीज़ें जो है ना, ये मासेस के लिए बनाई गई है। देखो, मंदिरों में जाना, उस दिन पूजा करना, चलो बोलते हैं और कुछ नहीं तो आप एटलीस्ट कुछ दिन याद कर लोगे भगवान को, कुछ दिन आप थोड़ा इस बहाने आप इस आपका बेंट ऑफ माइंड, नहीं तो तुम संसार में इतने उलझे हुए हो, है ना, तो मासेस के लिए बनाए गए हैं। लेकिन क्योंकि हम शंकराचार्य जी को बढ़ रहे हैं तो वो हमें मासेस का वो नहीं देंगे, वो मासेस का अब अप्लाई नहीं होता। जैसे कि अगर आप छोटे होते हो तो आपको वो जो होता है ना ABC वाला पढ़ते हो, लेकिन जब बड़े हो गए तो भी ABC पढ़ते रहोगे क्या? तो ABC नहीं पढ़ोगे ना आप, तो यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम देयर। तो बिल्कुल ऐसा ही है। फिर वो कहते हैं कि जो झूठा आए हैं और जो रियल आए हैं वो साथ साथ ही चलते हैं। ओके, उन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। जैसे सपोज मेरे हाथ में तो ये बुक है, सपोज मैंने अपने हाथ पे बुक रख दी, अब मैं अपना हाथ हिलाऊंगी तो ये बुक भी हिल रही है ना, तो बुक अपने आप नहीं हिल रही, मेरे हाथ के हिलाने से ये बुक भी हिल रही है। तो वो कह रहे हैं कि वो सेल्फ, जो रियल्स आए हैं और जो फॉल्स आए हैं, वो दोनों भी बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं, है ना। तो जो रियल आय है वही रियल है, लेकिन वहाँ जो हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है किसमें, फॉल्स आय में, है ना, और हमें लगने लगता है कि ये मैं हूँ, इसीलिए हमें भ्रम हो गया है। जैसे कि जब कोई बोलेगा किताब हिल रही है, तो किताब हिलने का भ्रम कैसे होगा, किताब अपने आप में नहीं हिल सकती, हाथ हिल रहा है तो लग रहा है कि किताब हिल रही है, तो रियल आय है इसलिए हमने उस फॉल्स आय को इम्पोर्टेंस दे दी है, लेकिन फॉल्स आय का अपने आप में कुछ भी नहीं है, इट इज़ द रियल आय ओनली। और हमारे जो सारे दुख हैं जीवन के, उनका मूल कारण क्या है, ये फॉल्स आय। Then she says, when the mind is calm, the chidabhas is calm. When the mind is still, the chidabhas is still. Chidabhas याद है ना क्या था? Reflection of the moon. हम अगर उसी example से चलें, है ना? तो और यहाँ पे mind क्या हो गया? वो पानी, वो घड़ा और वो पानी. तो अगर पानी हिल रहा होगा और गंदा होगा, तो chidabhas, जो moon की reflection है, वो भी हिलेगी और गंदी नजर आएगी. और अगर पानी साफ होगा और टिका हुआ होगा, स्थिर होगा, तो जो वो रिफ्लेक्शन है वो भी टिकी हुई होगी और स्थिर होगी, है ना। तो इसीलिए क्यों सब साधनाओं में बोला जाता है कि आप अपने मन को स्थिर करें, मन को शांत करें, इसीलिए बताया जाता है, इसीलिए, ताकि अगर माइंड काम होगा तो वो चिदाभास भी आपका काम होगा, वो रिफ्लेक्शन भी काम होगी, वो क्लियर नजर आएगी। और उन्होंने क्या बताया है यहाँ पे, माइंड को काम करने के लिए आपको जो भी क्रिया योगिक प्रैक्टिस समझ में आए आप वो करिए, चाहे वो मंत्र जाप हो, प्राणायाम हो, या अपने गुरु को याद करना हो। इसका पर्पस क्या है कि आपको अपने मन को स्थिर करना है, चित्त को स्थिर करना है। अब यहाँ पे हम दोनों चीज़ें साथ चलती हैं, देखिए मन को स्थिर करने को भी बोलते हैं टिल अ पर्टिकुलर पॉइंट, और उसके बाद हम ये रियलाइज करते हैं कि अरे मन तो मैं हूँ ही नहीं, है ना, तो मन से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जब तक हम उस पॉइंट पे नहीं पहुँच जाते, तो जो हमारी पहली सीढ़ी चल रही है वो क्या है, मन को स्थिर करना। इवन जब हम देखते हैं कि हमारा ये जो संसार है प्रतिपल बदल रहा है, इम्परमनेंट है, एफेमरल है, सिर्फ हम अगर उसके बारे में भी सोचेंगे तो भी हमारा मन स्थिर होने लगता है, है ना। नहीं तो हम क्या है, उन्हीं चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, इस संसार के पीछे ही भाग रहे हैं। जब हम जानने लगते हैं कि इनके पीछे भाग कर भी कुछ नहीं होने वाला, ये सब कुछ छूटने ही वाला है, आज नहीं तो कल, तो अगर हम इस पे थोड़ा सा अगर अडिग रहें ये सोचने पर भी, तो भी हमारा मन स्थिर हो जाता है। उन्होंने बोला है लेकिन जब जो गुरु के लिए प्रेम होता है उससे ये प्रोसेस बहुत तेज हो जाता है, बहुत फास्ट होता है। द ल्योर ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड फेड्स इन द लव फॉर द मास्टर। ये बात वैसे बिल्कुल, मतलब ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, जब हम लोग क्रिया योग सीख रहे थे, मुझे गुरुजी से इतना ज्यादा प्रेम था, और मुझे याद है एक बार मैंने बोला भी था, मैंने कहा कि पहले एक संसार था और उसमें फिर एक दिन गुरुजी आए, और फिर एक दिन क्या हुआ, वो पूरा संसार गायब हो गया और सिर्फ गुरुजी रह गए। मतलब मैं बहुत लंबी स्थिति में ऐसे में रही हूँ जहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका था, सिर्फ वो बचे थे, और एक दिन वो भी गायब हो गए। सो दैट इज द नेक्स्ट, पहले संसार गायब होता है, लेकिन वो संसार गायब करने के लिए आपको कोई एंकर चाहिए, है ना, आप कैसे सब कुछ छोड़ोगे, कुछ तो पकड़ोगे ना, क्योंकि ये जो मन की आदत है, ये जो ईगो की आदत है, उसको कुछ पकड़ने को चाहिए, तो आपको कोई पकड़ने के लिए चाहिए होता है, तो उसको पकड़ लो। और एक और चीज़ बताती हूँ, देखो एक होता है साधारण प्यार, है ना, हम लोगों ने सबने एक्सपीरियंस किया है, कभी टीनेज में, कभी अपने बच्चों के लिए, या फैमिली के लिए, या हस्बैंड के लिए, जो भी प्यार जो होता है। और एक होता है गुरु का प्यार। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है ना, अगर हम बाहर के तरीके से देखें तो दोनों बिल्कुल सेम है, मतलब इन द सेंस ऑफ फीलिंग्स में हमारा जो तरीका होता है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बिल्कुल वही फीलिंग्स होती हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अगर सपोज़ आप किसी नॉर्मल इंसान को प्यार करते हो, चाहे आप अपने हस्बैंड को करते हो या बच्चों को ही करते हो, तो क्या है, वो है माया से कनेक्टेड, है ना, क्योंकि वो दूसरा जानता नहीं है। अगर आप उसके प्यार में जाओगे, आप और ज़्यादा अंदर घुसोगे उसके अंदर, आप माया के अंदर ही घुसोगे, है ना। लेकिन जब गुरु से प्यार करते हो ना, क्योंकि गुरु माया में फंसा हुआ नहीं होता, तो वो क्या करता है, जब आप उसको प्यार करते हो वो आपको भी माया से बाहर निकाल देता है। समझ रहे हो डिफरेंस? एक आपको माया में ही रखता है, एक नॉर्मल इंसान का प्यार आपको संसार में रखता है, लेकिन गुरु का प्यार आपको संसार से बाहर खींच लेता है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है दोनों के प्रेम। तो इसीलिए बार बार ये बताते हैं, तो वो भी यही बता रही है कि उससे बहुत इजी हो जाता है, आपको संसार छोड़ना बहुत आसान हो जाता है असल में, अगर गुरु से प्यार हो जाए तो। और एक और चीज है, जो वैराग्य है वो बहुत ड्राई होता है। अगर वैसे आपको डिटैचमेंट हो जाए तो इट कैन बी वेरी वेरी ड्राई। तो फिर उन्होंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं कि वो कुछ महात्माओं से मिली जिनमें बहुत उनके जो हृदय हैं वो अपने गुरु के लिए ही प्रेम से और ग्रैटिट्यूड से भरे हुए होते हैं। कुछ भी उनको पूछो कि अरे तुम इतना सर्दी कैसे बर्दाश्त करते हो, इतनी मुश्किलों में कैसे रहते हो, ऐसी डिफ़िकल्ट प्रैक्टिसेस कैसे करते हो, तो उनका एक ही जवाब होता है कि ये गुरु कृपा है ना, इट इज़ माई मास्टर्स ग्रेस। और एक और क्या चीज़ होती है, जो ज्ञान है, जब आपका हृदय सच में प्रेम और श्रद्धा से भरा होता है, एक तो मुमुक्षुत्व की इच्छा, और जब प्रेम और श्रद्धा से भरा हो तो उस हृदय में ज्ञान उगना और आगे फलित होना बहुत ईजी हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना, कहीं पे बीज डालो, अगर जो ज़मीन है वो उपजाऊ होगी तो अच्छे से पौधा जल्दी से बड़ा होगा और उसमें फूल खिलेंगे या फल आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, जब हृदय शुद्ध होता है और प्रेम से भरा हो तो उसमें बहुत जल्दी वो ज्ञान को उपलब्ध भी होता है। तो उन्होंने कहा है, जैसे एक स्पॉन्ज है वो उसमें जल्दी से पानी चला जाता है ना, स्पॉन्ज हम लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जो प्रेम से भरा हुआ हृदय और मन होता है वो गुरु के दिए हुए ज्ञान को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर उन्होंने एक और बहुत अच्छी चीज़ बोली है यहाँ, वो कहती हैं, इफ़ योर जर्नी ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी बिगिंस विद लव, यू आर सॉर्टेड। वो कहती हैं कि कैसे, मतलब तुम्हारी शुरुआत कैसे हुई, तुम्हारी जर्नी जो है वो शुरुआत हुई कैसे, अगर वो प्रेम से शुरू हुई है तो समझ लो तुम बिल्कुल सही जा रहे हो, यू आर सॉर्टेड, फिर तो आगे तुम्हारा बिल्कुल पार लग जाना पक्का है। For the love will bring along with it dispassion, eligibility and the desire for liberation. है ना? सिर्फ प्रेम से ही क्या होता है, dispassion. Dispassion किसके प्रति? माया के प्रति, संसार के प्रति, जो चीज़ें छूटने वाली हैं उनके प्रति dispassion. फिर eligibility. हमने बोला था ना, हर कोई eligible नहीं होता ज्ञान के लिए, you have to be eligible. तो वो जो प्रेम है वो आपकी फाउंडेशन बनता है आपकी एलिजिबिलिटी के लिए भी, और डिज़ायर फॉर लिबरेशन, और अगर पहले ना भी हो तो मुमुक्षुत्वता आपकी बढ़ जाती है उसकी वजह से। अ लिबरेटेड मास्टर्स डिसाइपल्स विल गेट लिबरेटेड। यू इनकलकेट द एट्रीब्यूट्स ऑफ द पीपल यू मिंगल विद। तो अगर आपका गुरु ज्ञानी है तो शिष्य भी ज्ञानी ही होंगे, क्योंकि आप जिनकी संगति में रहते हो उनकी जो क्वालिटीज़ है, उनके जो गुण हैं वो आपके अंदर आ ही जाते हैं। फिर से वही क्या आ गया, सत्संग का महत्व है ना, सत्संग और आपकी कंपनी कैसी है उससे बहुत फर्क पड़ता है। वही कहते हैं, जितना तुम सांसारिक लोगों के साथ रहोगे उतने तुम भी सांसारी हो जाओगे, सोच वैसी ही हो जाएगी, क्योंकि मन का यही काम है। देखो, मन भी जो है जहाँ जैसे परिस्थितियों में होता है, जैसे लोगों के साथ होता है, जैसे विचारों के साथ होता है, उनसे प्रभावित होता ही है, है ना। अगर हम धूप में खड़े होंगे तो हमारे शरीर में गर्मी आएगी ना, हम क्या ये बोल सकती हूँ कि मैं धूप में खड़ी हूँ लेकिन मुझे गर्मी ना लगे और पसीना ना आए, ऐसा हो सकता है? अगर मैं बर्फ़ में खड़ी हूँ तो क्या ऐसा हो सकता है मैं बोलूँ मुझे ठंड ना लगे? शरीर को लगेगी ही ना, शरीर ऐसा ही बना है। बिल्कुल ऐसे ही मन है हमारा, अगर आप जैसे लोगों के साथ होगे वो उनका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। आप कितना ही सोच लो कि नहीं मेरे को नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे तो हर तरह के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, मेरे तो वर्ल्डली फ्रेंड्स भी बहुत हैं, उनके साथ भी मैं बहुत इन्जॉय कर लेती हूँ, लेकिन आप देखोगे आपके ऊपर उनका असर जरूर आएगा कहीं ना कहीं। नेक्स्ट में उन्होंने फिर से वही स्पेस के बारे में और एक्सपैंड किया है कि जैसे आकाश स्पेस हर जगह है, बिल्कुल ऐसे ही आत्मन भी हर जगह है। अगर आप पिंड को समझ जाते हो तो आप ब्रह्मांड को भी समझ जाते हो, है ना। ये हमारा बार बार आता है ना, पिंड और ब्रह्मांड दोनों क्योंकि एक ही हैं। जैसे कि हमारा शरीर को समझना हो, अगर देखो जब हमारा ब्लड टेस्ट होता है तो डॉक्टर क्या करता है, एक ड्रॉप ब्लड लेता है कि नहीं, कितना सारा खून है हमारे शरीर में, क्या वो सारे की चेकिंग करता है, एक ड्रॉप ब्लड लेता है और उसी से हमारे पूरे शरीर में क्या बीमारी है क्या है उसी में सारा का सारा आ जाता है ना। तो वो एक ब्लड क्या हुआ, वो हुआ पिंड, और हमारे शरीर में जितना खून है वो क्या हुआ, ब्रह्मांड, है ना। तो ये चीज हर लेवल पे अप्लाई होती है, हर लेवल पे। अब वो कहते हैं कि किसी का ये सवाल आ सकता है कि अगर आत्मन हर जगह है और मैं भी आत्मन ही हूँ, मैं आत्मन हूँ, तो ऐसा क्यों है कि मुझे अपना होना सिर्फ इस शरीर में ही महसूस होता है ना। ये बड़ा वैलिड सवाल है कि अगर मैं आत्मन हूँ, मैं सब कुछ हूँ, तो मुझे तो सिर्फ इस शरीर की ही भांति हो रही है ना, ऐसा क्यों है। तो इन्होंने आगे बहुत अच्छे से ये बताया है, क्योंकि जो ये सवाल पूछ रहा है, ये सवाल हमें देखना है कि सवाल पूछने वाला कौन है, कौन पूछ रहा है यहाँ पे सवाल, एक मन पूछ रहा है, एक क्रीचर पूछ रहा है। तो सवाल पूछने वाला जब इंडिविजुअल है, जब एक छोटा हिस्सा है, तो ऑब्वियसली उसको उतना ही फील हो रहा है ना। जैसे कि मून तो एक है लेकिन उसकी 500 रिफ्लेक्शंस पड़ रही होगी 500 घड़ों में। अब उसमें से एक रिफ्लेक्शन बोले कि आप बोल रहे हो कि सब ये तो वही है, मैं असल में वही हूँ, तो इसका मतलब बाकी वाले घड़ों में भी मैं ही हूँ, लेकिन मुझे तो सिर्फ इस वाले घड़े का फीलिंग हो रही है, समझ रहे हो। वो एक घड़े की जो रिफ्लेक्शन है वो बोले कि मुझे तो बस यही फील हो रहा है, समझे। तो पूछने वाला कौन है, अगर हम लिमिटेड इंटेलेक्ट से पूछ रहे हैं, एक लिमिटेड क्रीचर ये सवाल पूछ रहा है, तो वो लिमिटेशन में ही है। एक और हम इसको ऐसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे ये मेरा पूरा शरीर है, अब मेरी ये उंगली है, ये बोले कि मैं तो सिर्फ उंगली हूँ, मुझे तो सिर्फ उंगली की फीलिंग हो, क्या इस उंगली को ये माथा फील हो रहा है, नहीं हो रहा ना। क्या इस उंगली को दूसरी उंगली फील हो रही है, इस हाथ की बिल्कुल सेम उंगली, नहीं। इस उंगली को सिर्फ ये उंगली इतना ही हिस्सा फील हो रहा है, लेकिन क्या ये उंगली है या क्या ये शरीर है ना। हाँ, इट इज पार्ट ऑफ द बॉडी, इट इज द शरीर, इसको हम उंगली भी बोल सकते हैं और शरीर भी बोल सकते हैं। अगर ये सिर्फ अपने आप को उंगली मान के चलेगी और बोलेगी मैं तो अलग हूँ, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इसको, है ना। लेकिन अगर इसको ये अपना शरीर का ही हिस्सा मान के चलेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये उंगली तो अपने लिए सिर्फ अकेली खाने का इंतजाम कर सकती है, कुछ कर सकती है कि मैं खाना खाऊंगी, मैं देखूंगी कैसे, मैं चलूंगी, कुछ भी नहीं कर सकती है एक उंगली अपने आप में। लेकिन शरीर का हिस्सा बन जाती है तो सब कुछ हो रहा है इसका, है ना। दिस इज क्लियर ना, किसी को कुछ भी लगे तो पूछ लीजिएगा। फिर आगे वो यही बताते हैं कि हमें क्या करना है, जो हमारी आइडेंटिफिकेशन है, ये जो आइडेंटिफिकेशन है ना, ये सबसे भारी शब्द है, सबसे इम्पॉर्टेंट शब्द है, कि हमारी आइडेंटिफिकेशन कहाँ पर है। अगर हम अपनी फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस को हटाते जाएं लेयर्स को, तो क्या बचेगा, जो बचेगा वो ही आत्मन है। और यहाँ उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, उस समय सर्दी होगी ऋषिकेश में, सब लोग आए होंगे, कि तुम लोगों ने तीन तीन लेयर कपड़ों की पहनी है ना, ऊपर तुमने स्वेटर पहना है, उसके नीचे तुमने अपनी शर्ट पहनी है और उसके नीचे थर्मल पहना है, तो तीन लेयर्स हैं, तो तीन लेयर्स कपड़ों की लगाई हुई हैं। लेकिन क्या ये शरीर जो है वो इन कपड़ों से है, नहीं, शरीर इन कपड़ों से भी अलग है कि नहीं। चाहे तीन लेयर ऑफ कपड़े पहनी है लेकिन फिर भी शरीर इनसे अलग है, बिल्कुल ऐसे ही, चाहे भौतिक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, लेकिन जो आत्मन है वो उनके भी अलग है, वो उनसे भी अलग है, वो उसके ऊपर तीनों लेयर्स हैं। तो वह कहते हैं, सपोज तुमने कुछ खा रहे होगे तुम समोसा, और तुम्हारी चटनी गिर गई स्वेटर के ऊपर और स्वेटर गंदा हो गया, तो क्या तुम परेशान हो जाओगे? क्या रोते रहोगे बैठ के कि अरे मेरा स्वेटर गंदा हो गया? क्योंकि तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ है, स्वेटर गंदा हुआ है ना। तो वो कहते हैं कि जब इस शरीर को कुछ हो जाता है, जब इस शरीर में कोई बीमारी आ जाती है या इस शरीर की मृत्यु हो जाती है, तो तुम क्यों परेशान होते हो? जैसे तुम अपना स्वेटर बदल लेते हो, बिल्कुल ऐसे ही प्रकृति भी तुम्हारा शरीर बदल देती है, वो भी फ्री, एकदम फ्री, पैसे भी नहीं लेती। वो ये बोल रही हैं, वो हटा देती हैं उस शरीर को और एक नया शरीर तुमको दे देती हैं। जैसे तुम एक नया स्वेटर या धुला हुआ स्वेटर पहनते हो, बिल्कुल ऐसे ही। तो तुम क्यों इस शरीर से टंगे हुए हो, क्यों चिपके हुए हो? अरे ये बीमार है, अरे ये परेशान है, अरे इसकी मृत्यु हो गई। तुम हो ही नहीं, जैसे तुम वो स्वेटर नहीं हो, बिल्कुल उस तरह तुम ये शरीर भी नहीं हो। तो वहां से तुम निकल जाओ, उससे परेशान मत हो। शरीर बहुत सारे हैं, मन बहुत सारे हैं, लेकिन आत्मन एक ही है। अगर हम ये जान जाएं तो फिर किसी से हमें दुश्मनी नहीं होगी। कहाँ हम ये नहीं करेंगे, अरे ये अलग कंट्री का है, अरे ये अलग कम्युनिटी का है, ये अलग कास्ट का है, इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है ना, हम लोग उन चक्रों में पड़ेंगे ही नहीं। यहाँ पे वो ये बता रही हैं। और वो कह रही हैं, जो ज्ञानी गुरु रहते हैं इसीलिए वो फ्री रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए सब लोग एक जैसे ही हैं, सब लोग प्यारे हैं। दे हैव अ मोटिवलेस लव फॉर वन एंड ऑल। क्यों? क्योंकि कोई मोटिव है ही नहीं। जब सब एक ही है तो क्या मोटिव रहेगा, है ना, कोई और मोटिव रहता ही नहीं है। तो डिजायरलेस, विदाउट एनी अटैचमेंट्स और अवर्जन्स, अ हार्ट फुल ऑफ कंपैशन एंड लव, दे रिगार्ड ऑल एज देयर वेरी ओन, एंड देयर माइंड्स आर सो एम्प्टी ऑफ रिडंडेंट थॉट्स दैट इवन इफ अ थॉट डज अराइज इट गेट्स प्रॉम्प्टली फुलफिल्ड। इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे बताई है कि जब आपका जो मन है, आपका जो माइंड है, चित्त है, जब फजूल की बातें छोड़ देता है ना करना, देखिए ज़्यादातर वैसे तो खैर 100% ही जो भी माइंड में है वो कचरा ही है, पर फिर भी कुछ कचरा ज़रूरी होता है आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए। तो अगर हम 10% कचरे को रख भी लें, चलो 90% कचरा अगर हम निकाल देते हैं, तो मन इतना जब खाली हो जाता है वहाँ पे, तो आप जो इच्छा करते हो, जो चाहते हो, वो इमीडिएटली होने लगता है। पहले क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो पूरा भरा हुआ है ना। इसको हम ऐसे ले सकते हैं जैसे एक पाइप है, अगर एक पाइप के अंदर बहुत कचरा भरा हुआ है, आप एक एंड से पानी डालोगे, उसको निकलते निकलते कितना टाइम लगेगा, है ना, अड़ जाएगा। लेकिन अगर वही पाइप अगर खाली होगी तो आपने इधर पानी डाला और इधर निकला, है ना, फटाफट, इमीडिएट। ऐसे ही जब आपका मन इन बेकार के विचारों से, भावनाओं से, इच्छाओं से हट जाता है, तो आप अगर छोटी सी भी कोई इच्छा करते हो वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है।